नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने यह भी कहा है, ईश्वर गोसाई जब ब्रज कोयला बार, राधा कृष्ण मित्र लीला कोयला प्रकार। ब्रजवास से है गोस्वामियों का संबंध अवश्य है, लेकिन विशेष रूप से जो कार्यभार सौंपा गया था जीवन महाप्रभु जी के द्वारा, वो तिरूप और श्री सनातन गोस्वामी हमारे परम पूज्य पूर्व वक्ता महोदय ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। दार्शनिक भूमिका को लाते हुए श्री चैतन्य के आविर्भाव काल तथा छह गोस्वामियों जी उनका जो अवदान पर काफी कुछ बोल चुके हैं, उसके बाद विशेष कुछ कहना अवशेष नहीं रहता। मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा श्री मनरूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा की तरफ अवलोकन करते हुए और आप लोगों का आशीर्वाद याचना करते हुए कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं। श्रीमद् महाप्रभु जी ने एक गुरुतर भार सौंपा इन दोनों के कंध पर, दोनों के कंधे पर। और सबसे पहला जो उनका कार्यभार था, इस ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। तो बहुत ही सरल भाषा में, संक्षेप में समय का ध्यान रखते हुए कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो आप लोग सभी महानुभाव हैं, मुझे क्षमा करें। तो सबसे पहला जो कार्यभार था, इस ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। दूसरा कार्यभार ये था कि जहां जहां भी वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण तथा श्री राधिका जी की जो लीलाओं की स्थली है, उन स्थली का प्रकाश करते हुए उनकी लीलाओं का जो है परिचित उपस्थित करना। और तीसरा कार्यभार सबकी सबसे महान था, भक्ति रत्न शास्त्रों का प्रकाश करना और उनका प्रचार करना। इन्हीं के माध्यम से कलयुग के इतने ही जीव हैं जो भक्ति विमुख हैं, जो नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या वस्तु है और भजन क्या होता है और मानव जीवन को धारण करने के पश्चात हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इनका बोध जिनमें नहीं। क्योंकि तो अनाधिकार से जीव जो है वो बहिर्मुख है। इन बहिर्मुख जीवों को विशेष रूप से कलि के इस कलुषित अंतकरण वाले वासनावद जीवों को श्री भगवत उन्मुख करने का जो एक महान कार्य है, अन्य जीवों में तो ये कार्य इतना कठिन नहीं था जितना कि कलयुग में है, उस कठिनतम कार्य को सरलतम बनाने के लिए ही श्रीमद् महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ। प्रेम भक्ति विदानार्थम गौड़े स्वतता रह, श्री गोवर्धन पर वंदना करते हैं, प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है। और प्रभु कहे यानी कि संभर नाम धोरी नाम सार्थक है जो भी प्रेम की इच्छा हो, ये उसका संकल्प उनकी प्रतिज्ञा है। मेरा नाम विश्वभर है और मेरे नाम की सार्थकता कभी हो सकती है, विश्वभर माने विश्व को भर देना, किसी ऐसी व्यक्ति वस्तुओं से भरना नहीं, एक अलौकिक दिव्यतम वस्तु से भर देना। और वह वस्तु क्या है, वह है प्रेम। ये भगवत ईसा एक प्रेम है, ये लौकिक प्रेम नहीं, ये एक अलौकिक प्रेम है जिसकी अनुभूति रसिकरण करते हैं। और यह प्रेमा भक्ति एक ऐसा सूत्र है जो भक्त को भगवान से बांधते हैं। तो प्रेम भक्ति का प्रचार और नाम के माध्यम से प्रेम का प्रचार करने के लिए पतित पावनावतार कलयुग पावनावतार की श्रीमद् महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ था और उन्होंने अपने संकल्प को स्वीकार किया और अपने परम सहयोगी के रूप में अपने परम कृपा पात्र के रूप सनातन गोस्वामी जी के संग पर अपने इस कार्य का भाग्य सौंपा। विषय बहुत विषद है, समय अल्प है, इनके लिए जो भी कुछ कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। और उन बुद्ध जैसे अबोध व्यक्ति के लिए श्री रूप सनातन जी के बारे में कहना तो मैं समझता हूँ सूर्य को दीपक दिखाना है। देखिए तत्कालीन हुसैन शाह के राज्य में ये मंत्री पद में नियुक्त थे दोनों भाई रूप और सनातन, और वहां से छूट करके किस प्रकार से ये श्रीमद महाप्रभु जी के शरणागति में आए ये सब आप लोग जानते हैं। श्री रूप और श्री सनातन जी की जीवनी, उनका परम चरित्र, परम पवित्र चरित्र का आप लोगों को आप लोग जानते हैं, वहां कहने की आवश्यकता नहीं। केवल इसी बात हम बताना चाहते हैं कि उनका जो मिलन हुआ श्रीमद महाप्रभु जी के साथ ये अद्भुत घटना है। वास्तविक रूप में उनका जो सफल मिलन हुआ था श्री रूप गोस्वामी पाद का प्रयाग में श्रीमद महाप्रभु जी के साथ, और बहुत ही संकुचित भाव से लेकिन परम आनंद और आग्रह को लेकर के, आरती भाव को लेकर के श्रीमद महाप्रभु जी के दर्शन के लिए लालायित होकर के उनके सामने आ रही अपने भ्राता अनुपम जी को लेकर, और आते ही श्रीमद महाप्रभु जी के चरणों की वंदना करते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नाम। श्री रूप गोस्वामी पाद का कहना है मैं किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के पास नहीं आया, मेरे मिलन की आतुरता, मेरे हृदय की व्याकुलता किन से मिलने के लिए है, ये है एक महान बदान्य महान दानी जिनका कोई दूसरा दृष्टांत संसार में नहीं, इन महान दानी के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। हे महान दानी, हे महान बदान्य, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके दान करने से ये महादानी बने। वह वस्तु परम गोपनीय और परम दिव्य वस्तु है, वो क्या? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो ये महान संपत्ति है, जिस संपत्ति को भगवान श्री कृष्ण और उनके अन्य अवतारों में भी इस अपनी निजी संपत्ति को देने से जरा वो हिचकिचाते नहीं देते, और जो उनके भक्त हैं, भक्तों की श्रेणी है, कई प्रकार के भक्त होते हैं और कई प्रकार के भक्त बनते हैं, सभी भगवान के शरणागत होते हैं, आते हैं भगवान के शरणागत बिंदों में और कुछ मांगते हैं लेकिन भगवान देते हैं, केवल एक वस्तु को जो है अपने पास रखते हैं, देना नहीं चाहते, सहन नहीं देते। कृष्ण जो भी छूटे भोक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, वो भू प्रेम भोक्ति नाही ले राखे लुकाइया, कृष्ण की भाषा है। भक्तों को भुक्ति इस संसार के भोगी वस्तुओं का डाल करते हैं कि जो उन्हें क्या क्या दिया, और बहुत ही ऊंचे हो वही तो वही मोक्ष चाहिए तो मोक्ष लेना, लेकिन अपनी जो निजी संपत्ति है उसको देने से कतराते हैं। तो वो प्रेम भक्ति नहीं है रास्ते लुका लिया, क्यों? वो जानते हैं अगर मैंने अपनी प्रेम भक्ति इनको दे दिया तो मैं बन गया, फिर मैं इसके अधीन हो गए और इनसे भक्त से मेरा छुटकारा तो है नहीं, इसलिए स्वयं जिस बंधन में बंधने का जिनको शंका है उस बंधनमयी भक्ति को देने से वो किस प्रकार संकुचित होते हैं इसका वर्णन किया है। और देते कब है? जो भक्त मांगते हैं नहीं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा से आपकी भक्ति चाहिए। हनुमान जी से बाकी क्षमा कीजिएगा विषय जरा अगर समय कुछ अधिक हो जाए तो आपकी क्षमा मांगता हूं। एक बात की राघवेंद्र महाराज ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से पूछा था कि हनुमान तुम हमारे परम प्रिय हो, बोलो क्या चाहिए, मुक्ति चाहते हो? सुनकर के एकदम उनको आश्चर्य हुआ कि प्रभु मेरे आप क्या कह रहे हैं हमसे, मुक्ति और मुझे? कहा था उन्होंने भगवंधन छिदे तस्कृत, हे भगवान ऐसी मुक्ति को हमें नहीं चाहिए जिसका के संबंध केवल भगवंधन छेदन से हो, संसार के बंधन को छेदन मात्र ही इसका कार्य। बोले क्यों? कि भगवान प्रभु रहम दास इति जब प्रतिलुप्यते, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। यह जो स्वामी सेवक भाव है, यह जो भक्ति सद्भाव है, इसका लोप हो जाता है जिसमें, ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए प्रभु, हम तो आपके चरणों में भक्ति चाहिए। तो जो भक्त हैं परम प्रिय भक्त अपने परम प्रिय यतम का भाव है, दासी भाव, सत्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव उपासनाओं के भेद है, वो तो आप लोग जानते हैं। भक्त का जैसा भाव है उसी अनुरूप जो है भगवान को उसी रूप में उनकी भक्ति मानते हैं। तो भक्तों को देते हैं प्रेम भक्ति बहुत देखभाल कर, परीक्षा निरीक्षा करने के पश्चात जब ये देख लेते हैं कि हाँ अब ये भक्त जो है प्रेम भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता, तब वो देते हैं। और देने के पश्चात अहम भक्त पराधीन हूं, हम भक्त के पराधीन हैं, और वो भक्ति एक ऐसा सूत्र है कि उस भगवान को भक्त से बांध देता है। न भगवान को मुक्ति है और न भक्त को मुक्ति, भक्ति देवी जो है दोनों को इतने सानिध्य में ले आती है कि दोनों एक दूसरे के अन्योन्य स्थित हो जाते। इसीलिए श्री भगवान भक्त को भक्ति देने से जरा हिचकिचाते हैं, लेकिन श्री चैतन्य बता दें, श्री चैतन्य महाप्रभु परम करुणावतार, जिन्होंने देखा कि इस कलयुग के जीवों का और कोई उद्धार है नहीं, ये बहिर्मुख है, ये वासनावश है, ये माया में फंसे हुए हैं, ये नहीं जानते हैं कि भक्ति क्या चीज होती है, हित और अहित का ज्ञान किसे नहीं होता। परम कृपालु प्रभु, जैसे माता अपने शिशुओं का भला किसमें है वो स्वयं समझती है, शिशु नहीं समझता है कि हमको किसमें भलाई है, किसमें हित है और किसमें अहित है। शिशु तो केवल रोता है जब दुख आता है, उसे नहीं पता कब भूख है, कब खाने को मिल दिया जाए और कब जो है किस वस्तु की आवश्यकता हो। माता जानती है कि इस समय मेरी संतान, मेरे शिशु को इस समय इस वस्तु की आवश्यकता। परम करुणावतार की चैतन्य महाप्रभु जी अवतीर्ण होकर के जीवों की कथा को देखकर, हेलो प्रेम चैतन्य दीदा चौथा चौथा, जिस प्रेम को देने में भगवान कतराते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी आकर के अविचार से बिना देखे भाले कि इसका पात्र है या नहीं, दाता जरूर देखता है, पति देखना चाहिए नहीं, किसान को कहता है कि जिस वस्तु का हम दान जिसे कर रहे हैं उसे पात्रता है या नहीं, इन्होंने कोई पात्रता नहीं देखा। है ना प्रेम सिंचई तरुण नदी झीला चौथा चौथा, जोगाई मन है मुझन तो उन्होंने रिका पाता उसमें पसंद आता है, जगाई मन है उठा के पसंद में उन्होंने कहा अस्तु। तो जीवन महाप्रभु जी ने उस अपने निजी परम संपत्ति जिसको वो गोपन करके रखते हैं, इसी अपने इस चैतन्यावतार में उन्होंने दान कर दिया, खुल करके परम औदार्य से उन्होंने उदारता के साथ दान किया। और इस कार्य का जो भार है, श्री भक्ति सिद्धांत, रस सिद्धांत और विशेष रूप से रागानुगा भक्ति का जो प्रचार और प्रसार है, इस कार्य का गुरुतर दायित्व जो है इसको सौंपा अपने परम प्रिय परम कृपा पात्र श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी जी के कंधों में। देखिए भगवंतम कृपायनम, वंदना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और भगवत शब्द की जो विपत्ति में बहुत कुछ आ जाता है। एक शब्द उसमें है वैराग्य, ज्ञान वैराग्य है वो चाहती सन्ना भूमि तीरना। तो ये जो वैराग्य और ज्ञान है ज्ञान कैसा? शुद्ध ज्ञान नहीं, ये भक्ति संबंधित ज्ञान है। और वैराग्य कैसा? जिस वैराग्य के द्वारा हम अपनी भक्ति साधना में चल सकते हैं, ऐसे वैराग्य को उन्होंने जो है उसका प्रचार किया। और रूप सनातन जी के परम पवित्र महान जीवन के माध्यम से जीव जगत को वैराग्य क्या होता है और भक्ति क्या होती है, साधना किसे कहते हैं, इसका परिज्ञान कराया। आपने आचरी धर्म जीने भी सीखा है इस सिद्धांत के आधार पर। श्री सनातन गोस्वामी जब पहली बार मिले, संकुचित भाव से वो दूर रहे थे, उनकी इच्छा प्रबल थी, बड़ी व्याकुल था अपने हृदय में श्रीमद महाप्रभु जी के चरण को स्पर्श करने की, लेकिन वो संकुचित हो रहे थे कि कुशल शाह की नौकरी में उनकी जो है मंत्री रह करके मैं अपने जीवन में बड़ा ही दीनहीन पतित हो गया, तो मैं अपने इस शरीर से अपने इस हाथ से कैसे भगवान के चरण कमल को कहूं। श्रीमद महाप्रभु तो परम दास थे। पहले मिलन के पश्चात श्रीमद महाप्रभु जी स्वयं उठ करके दोनों हाथ बढ़ा करके उनका आलिंगन किया। जैसे ही आलिंगन किया, प्रेम पुलकित हो गया उनका सारा शरीर। उसी समय उनको ज्ञान आया, अरे मैं तो बड़ा पवित्र अपवित्र, मैं बड़ा हीन दीन, प्रभु ने मेरे इस अपवित्र शरीर का स्पर्श किया, हरे कितना अपराध हो गया, प्रभु मेरा स्पर्श ना करे। श्रीमद महाप्रभु जी ने क्या उत्तर दिया था उनको? प्रभु श्रीमद महाप्रभु जी ने कहा कि प्रभु कहे, सनातन गोस्वामी जी से कह रहे हैं, प्रभु कहे तोमार स्पर्श पवित्र हो। इसे देखिए, पवित्राणाम पवित्रम, मंगलानाम च मंगलम, जो स्वयं पवित्रों के लिए पवित्र हैं, पवित्रतम रूप पवित्रतम विष्णुमूर्ति जी पवित्र हैं श्री भगवान। और वो क्या कह रहे हैं आज कि प्रभु कहे तोमार स्पर्श पवित्र हो। इसे सनातन गोस्वामी जी को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए स्वयं पवित्र होने के लिए। और आगे बोलते हैं कि हे सनातन, भक्ति बोले पारो तुम्हें ब्रह्मांड शोधित, विश्व ब्रह्मांड का शोधन करने में तुम समर्थ हो केवल भक्ति की शक्ति के द्वारा। भगवान जानते हैं भक्त के हृदय के भाव को, समझते हैं भक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा परम शक्तिमान को भी जो है वशीभूत करके सामने ला सकती है। सनातन, यह जो भक्ति बल है, इस भक्ति के बल के द्वारा तुम केवल एक जीव एक लोक नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का शोधन करने में समर्थ हो, इसलिए अवश्य मैं तुम्हारा आलिंगन करूंगा। कौन कहता है तुम अपवित्र हो? आओ, भक्त अगर भगवान से मिलने के लिए एक पग आगे बढ़ाता है तो मेरे भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त से मिलने के लिए 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। भक्त संकुचित होते हैं कि मेरे अपवित्र देह को स्पर्श न करें, जैसे सनातन गोस्वामी जी का दृष्टांत है। लेकिन भगवान और ही गाढ़ दृढ़ता से इनको अपने पानुपात से बांध करके आलिंगन दान करते हैं। तो अद्भुत उनकी लीला है, अद्भुत उनका चरित्र है, अद्भुत उनका अवनाम है। हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कृष्ण तत्व भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम तत्व है, और उसी तत्व का प्रतिपादन करना जिसके लिए सनातन गोस्वामी पाद और उनके परम सहयोगी श्री जी गोस्वामी पाद ने जो है भक्ति ग्रंथों का प्रतिपादन किया जीव जगत के कल्याण के निमित्त। तो आज इस महान अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं श्रीमद महाप्रभु और उनके परम प्रिय परम कृपा पात्र श्री और श्री गोस्वामी पाद जी के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, याचना है, निवेदन है कि वो अपनी कृपा कणिका को दान करें, जिससे कि हम अपने जीवन को कृतार्थ बना सकें। और साथ ही साथ आप सभी उदार महान भाव भजनाना श्री राधा गोविंद श्री गौर गोविंद भजनान लागी सज्जन, आप सभी परम वैष्णव महाभागवतगण स्वामी जी महाराजों के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आज के अवसर पर वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि श्री रूप सनातन जी के परम दिव्यतम चरित्र को और उनके अवदान को समझने की क्षमता मेरे अंदर आए।
श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का परम गौरव और कृपा पात्र। कहा कि ये सांसारिक संपत्ति नश्वर है, नष्टवान है। यदि कोई संपत्ति आपको अपने पास रखनी है तो केवल मात्र कृष्ण प्रेम ही महान संपत्ति। इसके अनंत हमारे मध्य में श्री कृष्ण बलराम मंदिर के अध्यक्ष स्वामी श्री दीनबंधु दास जी महाराज पधारे हुए हैं। अंदर भी श्री राम वृंदावन में जो रूप सनातन गौड़ी मठ मंदिर बना है, इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट महत्व। इस मंदिर का, इस मठ का महत्व केवल भक्त वृंदावन के लिए नहीं, व्रज मंडल के लिए नहीं, भारतवर्ष के लिए नहीं, अपितु विश्व के धरा पटल पर अपना विशिष्ट वैशिष्ट्य है। इसकी उन्नति के लिए हम संपूर्ण त्रिकोटियों की ओर से, विश्व के कोने कोने के भक्तों की ओर से मंगल कामना अर्पित करते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में आज विश्व का मानव कृष्ण नाम के लिए सीधा वृंदावन की ओर दौड़ रहा है। और जिस समय वो विश्व का मानव, जब विश्व का प्राणी इस सीधा वृंदावन में आएगा और वृंदावन में नवनिर्मित इस रूप सनातन गौड़ी मठ में आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ से वो श्री चैतन्य महाप्रभु देव के भक्ति आंदोलन से इसके अंदर आज की धर्म सभा के विशिष्ट अतिथि सरंगी स्वामी परिव्राजकाचार्य श्री जनार्दन जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस विषय पर प्रकाश डालकर हमें कृतार्थ करें।
मंदी की तेंदी बरम जाड्यम जागुड़ो किसान विदम पट्टर सृंदारलासिनिगसदाधिदामोदर राधास्कंदवेशलभुज ध्यामोदर परम पूजनीय सभापतिवृंद एवं पूजनीय वैष्णववृंद आज्ञा कर কিছু উদ্ভবস্বামী এবং সমাজঙ্গ স্বামী অবদান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলবার জন্য। আমি তো উচ্ছিষ্ট বুঝি, তাদের মুখে যা শুনেছি তাই অনুকীর্তন করি। সনাতন গোস্বামীকে আমরা সম্বন্ধদাতা আচার্য মনে করি। সে সনাতন গোস্বামী জগতে সম্বন্ধ প্রদান করেছেন এবং রূপস্বামী বা অবিধেয় সম্বন্ধে বলেছেন। তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সনাতন গোস্বামীকে সম্বন্ধ আচার্য বলে তার উপাস্য দেব সেই জয়তাম সুরতু পণে মম মন্দ মতের গতি মৎসর্বস্ব পদাম্ভুজ রাধা মদন মোহন। রাধা মদন মোহন হচ্ছেন জগতের সম্বন্ধ। সনাতন গোস্বামী ব্যক্তিগত কোন কথা বলেন না, বেদ পুরাণ ইতিহাস সর্বতভাবে সার সংগ্রহ করি। রাধা মদন মোহনই যে জগতের একমাত্র সম্বন্ধ, এই তিনি আমাদের দয়া করি অনভিষ্ট অন্ধ। আমরা অন্ধ চাই না, অপায়মান জোর করে তিনি পান করেছেন। সেই সনাতন গোস্বামী গীতা তো ভগবান প্রথমে সম্বন্ধের কথা বলছেন, সম্বন্ধ না হলে কি করব, কার করব। জগতে সম্বন্ধের দাতা বহু আছেন, তারা আছেন দেশগত সম্বন্ধ বলে নতুবা দেহ সম্বন্ধীয় বলে থাকেন, কিন্তু এই সম্বন্ধ সহ পরিবর্তনশীল, এই সম্বন্ধ থাকে না। আজকে যাকে আমি পিতা মাতা মনে করে তাদের চরণে নত করছি, কালকে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় অন্যত্র জন্মগ্রহণ করি, তাহলে এই সম্বন্ধ নষ্ট। আজকে ভাবভূমিকে আমরা নিত্য সম্বন্ধ বলে ঘোষণা করছি, কিন্তু কালকে যদি আমি অন্যত্র গিয়ে সেখানে কাজ নাগরিক হয়ে যাই, ভারতের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকে না, একমাত্র শ্যাম সুন্দরের সঙ্গেই সম্বন্ধ, জন্মগত সম্বন্ধ হতে তো অম সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্বম প্রবর্ততে ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাব সমন্বিতা। সম্বন্ধ, সম্বন্ধের অর্থ করব, সম্বন্ধ মানে কার করব আমি, সেই জন্য তো বেদান্তে বলেছেন যে জন্মাদস্য যত যত বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যত্রজন্তি অভিসম্বিশন্তি তদ্বি জিজ্ঞাস তদ ব্রহ্মা। সেটি কৃষ্ণ বলছে, তার জন্মগত সম্বন্ধ উৎপত্তিগত সম্বন্ধ শ্যাম সুন্দর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে, সেই হিসাবে তিনি বলছেন যে অর্জুন চিন্তা করো, ইতিমত্বা ভজন্তি মা বুদাভাব সমন্বিতা। পণ্ডিতগণ, বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, আমি তো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূল এক সম্বন্ধ, দ্বিতীয় সম্বন্ধ হচ্ছে আমি কে তা তো জানা দরকার, দেহ মন তো সাময়িক, সুতরাং স্বরূপগত সম্বন্ধ শ্যাম সুন্দরের সহিত, ভূমির আপ অনল বায়ু খনু বুদ্ধি বচ অহংকার ইতি অমি ভিন্না প্রকৃতি অষ্টধা অপরেয়ং ইতস্তন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম জীবভূতাং মহাবাহু জয়েদম ধার্যতে জগৎ। এইসব আমরা শ্যাম সুন্দরের শক্তির অংশ, শক্তিকে এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না, ক্রিয়ার মাধ্যমে বোঝা যায়। এইখানে আর কোন দেশগত সম্বন্ধ, কোন জন্তুগত সম্বন্ধ, কোন প্রাণীগত সম্বন্ধ নয়, নিত্য সম্বন্ধেই সকলে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ। দেহটা যদিও মায়া থেকে পেয়েছি, চণ্ডীতে বলেছে শরণ্যে ত্রম্বিকে গৌরী নারায়ণী ত্রয়ম্বিকে, সত্যরজতম থেকে সেই মায়া থেকে সত্যরজতমের প্রকাশ। কিন্তু বলছেন ভগবান, এই মায়া তো আমার ইচ্ছাক্রমে মায়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি শুয়েতে সচরাচরম, সুতরাং মায়া থেকে আমরা আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী পেয়েছি, যে উপাদান দ্বারা আমাদের পোশাকটা তৈরি হয়েছে, কিন্তু মূল আত্মা সেই সেই শক্তিও ভগবান কৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি। তার উৎপত্তিগত সম্বন্ধ, স্বরূপগত সম্বন্ধ, দেহগত সম্বন্ধ কৃষ্ণ, আর একটি সম্বন্ধ হচ্ছে ঋষিকেশ। কমলাজন ইন্দ্রিয়বান মুকুন্দ চরণাম্বুজম, বলছে যে জগতে কে আছে যে ইন্দ্রিয়বান, ইন্দ্রিয় প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় আছে, পশু পক্ষী কি পতঙ্গ এমনকি প্রস্তর। সনাতন গোস্বামী লিখেছেন যে পুলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এবং বাপুষ্ক লিঙ্গ প্রস্তরা, সনাতন গোস্বামী হরিভক্তি বিরাজে লিখেছেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধ কৃষ্ণের সহিতে, কৃষ্ণের একটি নাম হচ্ছে ঋষিকেশ। ঋষিকানাং এইসব কার ইন্দ্রিয় নাই বলুন তো দেখি। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধ কৃষ্ণের সহিত, আর সনাতন গোস্বামীর আরাধ্য দেব হচ্ছেন মদন মোহন। সম্বন্ধাদি দেব মোর মদন মোহন যার সেবক হন রূপ সনাতন। মদন মোহন এইটা কিরকম সম্বন্ধ, মদন মোহন তোর জন্যই তো শ্রী সিদ্ধমীর স্বামী বা রাত্রিরা পূর্বে বর্ণনা করেছেন, ব্রহ্মাদি জয় সংরূঢ় কন্দপ দর্প দর্পহা জয়তি শ্রীপতির গোপী রাসমঙ্গল মন্দির। মদন মোহন জগতে আমরা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করি সকলেই মদন দ্বারা মোহিত হয়ে যায়, কিন্তু শ্যাম সুন্দর মদন মোহন রাজা এসে যদি আমাদের পরাস্ত করে আমরা তার অধীনই পড়ি, কিন্তু সেই রাজাকে যদি এসে পরাস্ত করে তখন আমরা তার অধীন হয়ে যাব। সেই রকম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে সব মদনেতে মোহিত, কিন্তু সেই মদন আবার শ্যাম সুন্দরের পদনাথ দর্শন করে সেই মোহিত হয়ে যায়। এই জন্য মদন মোহন কিরকম রাস করলেন কিছু দেখুন, অবরুদ্ধ সুরত সুরত ব্যাপারকে রোধন করে ভগবান হরি মদনকে জয় করেছিলেন। এসব কথা ছিল সনাতন গোস্বামী বৃহৎ ভাগবত আমৃতে দেখা। প্রথমে প্রয়াগ ব্রাহ্মণ থেকে স্বর্গে গেলেন, স্বর্গে যে নিত্য সম্বন্ধ নাই মদনমোহন এর সেবকের সেখানে মন তৃপ্তি লাভ করে না। কিরকম দেখুন আজ পর্যন্ত কোন শাস্ত্রেতে সনাতন গোস্বামীর মতন একদম চোখে যে আঙুল দিয়ে কেউ দেখাচ্ছে না। তারপর স্বর্গে গেলেন, সেই গোপাল রাজত্ব পেলেন, ইন্দ্রত্ব পেলেন, সেখানেও তার শান্তি নাই। আবার বিভিন্ন মহর্ষিগণের কাছে গেলেন, সেখানেও তার অভাব পূর্ণ হচ্ছে না। আবার গেলেন কোথায়, তপলোকেতে, যেখানে পিপলায়ন কবি হবি অন্তরিক্ষ সনক সনাতন, সেখানে গিয়েও সেই মদনমোহনের সেবকের তৃপ্তি লাভ হচ্ছে না, বৈকুণ্ঠে গিয়েও তৃপ্তি লাভ হচ্ছে না। মদনমোহনের সেবকের বৈকুণ্ঠ প্রীতি নাই দেখাচ্ছে। আবার অযোধ্যা গিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, এমনকি দ্বারকাধীশ পার্বত্যে উপনীত হইও তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। কেন? সেখানে মাধুর্য ঐশ্বর্য মিশ্রিত, এই তো গোপবাল নিষ্কিঞ্চ বর্ণবেশ গোপবেশ। সেখানে আবার দ্বারকাধীশের যেসব পার্শ্ববর্গ আসছেন একে বলছেন যে তুমি নিষ্কিঞ্চ বেশ এখানে চলবে না, এখানে রাজ ঐশ্বর্য আমার পিতা তুমি বন্ধু সেই রকম পোশাক পরিচ্ছদ করো, তাতে মদনমোহনের সেবকের মন তৃপ্তি হচ্ছে না। আবার যখন দ্বারকাধীশ সুধর্মা নামক সভাতে যাচ্ছেন, তিনি আর এই অকিঞ্চন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না, সেখানে ব্রহ্মা আসছেন, শিব আসছেন এবং পাণ্ডবগণ যাচ্ছেন ঐশ্বর্য বেশিতে অকিঞ্চন ভক্তের সেখানে তৃপ্তি না। সেতে বৃন্দাবনে এসে এইখানে যে মাধুর্য রথের বিরাট, এসব কথা সনাতন গোস্বামী তার বৃহৎ ভাগবত আমৃতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিয়েছি, দেখো তোমাদের আর যেতে হবে না, আমি দেখাচ্ছি। তারপর ভক্ত সম্বন্ধও দেখে দিয়েছেন, কে কে পরিমাণে কার আধার কতটুকু, কে কে পরিমাণে কতটুকু পরিমাণে শ্যাম সুন্দরে পাদপদ্ম উপলব্ধি করেছেন, এসব সনাতন গোস্বামী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সে সনাতন গোস্বামীর অবদান সম্বন্ধে আমরা কি বলব, মুঝন্তি যৎসুরায়ু বলবার সামর্থ্য নাই। তবে বৈষ্ণবগণের আমরা হচ্ছি আজ্ঞাবহিষ্ট, তাদের কৃপা হলে শ্যাম সুন্দরের কৃপা অবিচারিত হবে। সেই জন্য সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে সামান্য বললাম,